नानी ने माँ को आहन को आइडिया दिया। आहन को नानी माँ का आइडिया पसंद आया और वो फटाफट बाथरूम में घुस गया। वहां जाकर उसने अपनी बेसुरी आवाज में गाना शुरू कर दिया। आहन बड़ी बेसुरी आवाज में गा रहा था, मैं जट यमला पगला दीवाना, मैं जट यमला पगला दीवाना, और अब्बा इत्ती सी बात न जाना, के ओ मैनू प्यार करती है, साडे उत्ते ओ मरती है, के ओ मैनू प्यार करती है, साडे उत्ते ओ मरती है, मैं जट यमला पगला दीवाना, ओ रब्बा इत्ती सी बात न जाना, के ओ मैनू प्यार करती है, साडे उत्ते ओ मरती है, के ओ मैनू प्यार करती है, साडे उत्ते ओ मरती है। सब लोग आहन का गाना सुनकर बहुत ज्यादा इरिटेट हो गए थे। रौनक अपने कानों में उंगली देकर बैठी हुई थी। वो रश्मि की ओर देखकर बोली, दीदी आखिरकार कब इस छछुंदर का नहाना खत्म होगा? आखिरकार कब तक ये अपने बेसुरे गाने की आवाज से हम सबको टॉर्चर करता रहेगा? आप अच्छी तरह से जानती हो दीदी, ये वाला गाना मेरा कितना ज्यादा फेवरेट है, लेकिन पहली बार मुझे ये गाना बहुत बुरा लग रहा है। प्लीज कुछ भी करें लेकिन इसे चुप कराओ, मैं आज के बाद ये गाना कभी नहीं सुनूंगी। रौनक ने जिस तरह से मुंह बनाकर कहा कि सभी लोग जोरों से हंसने लगे। आज नानी माँ की आंखें खुशी से नम हो उठी थीं। उनके बेजान पड़े घर में आज जान आ गई थी। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था। अरमान और सभी तैयार होकर आ गए थे। आहान ने भी फाइनली नहा धोकर तैयार होकर बाहर आ गया था और घूर कर सबको देख रहा था। फिलहाल उसने ध्रुव के पास जाकर चिढ़कर कहा, आज तो तुम बाथरूम घुस गए हो, लेकिन अगली बार मैं जाऊंगा सबसे पहले नहाने के लिए। ध्रुव उसके गुस्से को नजरअंदाज करते हुए बोला, ठीक है, जो जल्दी जाएगा वही बाथरूम यूज कर पाएगा। ध्रुव की बात सुनकर आहान ध्रुव को किलर लुक देते हुए दादाजी के पास बैठ गया और एक्साइटेड होते हुए बोला, दादाजी अब सुबह सुबह गांव देखाएं प्लीज, मुझे वो जगह बता दीजिए जो जगह गांव में सबसे ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि मैं फालतू की जगह जाकर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। आहान की बात सुनकर दादाजी ने उसके सर पर एक चपेट लगा दी और हंसकर बोले, जस्ट शट अप, क्या बोल रहा है तू, पूरा गाँव बड़ा खूबसूरत है, तू पूरा जाकर गाँव देखा। वहीं आस्था एक्साइटमेंट में बोली, देखिए आप सब लोग बातें कीजिए, हम जा रहे हैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए, तब तक आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए। आस्था की बात सुनकर अरमान उसे घूर कर देखने लगा और अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला, लेकिन तुम किससे मिलने के लिए जा रही हो और तुम इस तरह से कैसे जा सकते हो हम लोगों को यहाँ छोड़कर, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। तब आस्था मुस्कुराते हुए बोली, नहीं नहीं अरमान जी, हम इतने सारे गिफ्ट उन लोगों के लिए लेकर आए हैं, गिफ्ट छोड़कर वो सब आपके बारे में पूछेंगे और हम सबको जवाब देते देते थक जाएंगे कि आप हमारे कौन हैं, क्योंकि हमने सबको पहले ही कह दिया था कि हम कभी भी शादी नहीं करेंगे, और अगर उन सबको ये पता चल गया कि हमारी शादी हो गई है सब हमें चिढ़ाएंगे। आस्था की बात सुनकर अरमान अपनी आंखें छोटी करके आस्था को घूरने लगा। वहीं नानी माँ आस्था की बचकानी बातें सुनकर मुस्कुरा दी और प्यार भरी नजरों से देखकर बोली, गोरी बच्चे तू ले जा दामाद जी को, अगर उन्हें अपने दोस्तों से मिलाएगी जुलाएगी नहीं तो तुम्हारे दोस्तों से वो कैसे अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाएंगे, और मैं तो कहती हूँ तू सबको लेकर जा, जल्दी जा इससे पहले कि देर हो जाए। तब अरमान हैरानी से नानी माँ की ओर देखकर बोला, लेकिन किस बात के लिए देर हो जाएगी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद नानी माँ बोली, उसके बाद वो चले जाएंगे ना। अब आहान हैरान होकर बोला, लेकिन नानी माँ अगर इसी गाँव में आस्था भाभी के दोस्त रहते हैं तो वो सब कहाँ चले जाएंगे, गाँव में रहेंगे ना। तब नानी माँ कुछ और कहना चाहती थीं, तभी बीच में रश्मि बोल पड़ी, आस्था तुम ये बातें करने में टाइम वेस्ट मत करो, हम तुम्हारे दोस्तों से मिलना चाहते हैं, तुम लेकर चलो हमें अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए, और पिंकी और राजू से तो हमें जरूर मिलवाना। ऐसा कहकर रश्मि मुस्कुरा दी और मुस्कुराते हुए बोली, और हमारे साथ राधिका रौनक भी चलेंगे। जानबूझकर रश्मि ने एंजल का नाम नहीं लिया था, क्योंकि उन सबके मन में कहीं ना कहीं एंजल के लिए थोड़ी सी कड़वाहट थी। वहीं एंजल उससे एक तरफ बैठी हुई थी, क्योंकि उससे कोई बात नहीं कर रहा था, वो तो बस बैठी हुई अविनाश को देखे जा रही थी। अविनाश जो कि आस्था की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था और जेंटल वॉइस में बोला, अच्छा गोरी मैं भी चलूं तुम्हारे दोस्तों से मिलने के लिए? तब आस्था चहकते हुए बोलती है, हाँ हाँ भैया क्यों नहीं, आइए चलिए ना, हम आपको लेकर चलते हैं। ऐसा बोलकर आस्था ने जल्दी ही अविनाश का हाथ पकड़ लिया। अब अरमान को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई थी कि आस्था ने इस तरह से अविनाश का हाथ पकड़ा था, और वो मन मन में झल्ला उठा था और खुद से बोला, क्या ये लड़की मेरा हाथ नहीं पकड़ सकती थी, जरूरत है इसे अपने भाई का हाथ पकड़ने की। तब आस्था और अविनाश दोनों आगे आगे जाने लगे और नानी माँ और दादाजी और एंजल को घर पर ही रह गए थे। नानी माँ ने बोला भी था कि एंजल बेटी तुम भी गांव घुमाओ, लेकिन एंजल सबके चेहरे देखने के बाद बोली, नहीं नहीं नानी माँ, हमारा कहीं जाने का इरादा नहीं है, वैसे भी नींद पूरी नहीं हुई तो मैं सोने जाऊंगी। ये बोलकर जल्दी ही एंजल कमरे में जाकर उल्टे मुंह लेट गई। उसका भी मन था सबके साथ गाँव जाने का, लेकिन कोई उसे ज्यादा भाव नहीं दे रहा था तो ये बातों से अंदर ही अंदर हर्ट कर रही थी। वेल, जल्दी ही आस्था अब घर से निकलकर पाठशाला की तरफ जाने लगी। गांव में इस वक्त कुछ औरतें ही बाहर निकलती हैं और सभी आस्था को देख रही थी। आस्था सभी को हेलो हाय नमस्ते करती हुई जा रही थी। हर कोई आस्था के बारे में उसे देख देख कर उसके हालचाल पूछ रहा था। सभी आस्था से मुस्कुराकर बोल रहे थे और बार बार उसके साथ आए लोगों के बारे में भी पूछ रहे थे। और आस्था सबको खुशी से बताते जा रही थी कि ये हमारे भैया हैं, ये हमारे पति हैं, ये हमारे देवर हैं और ये हमारी दीदी हैं। आस्था सभी से रश्मि राधिका रौनक को दोस्त दीदी कहकर बुला रही थी। ध्रुव आहान को अपने देवर कहकर मिलवा रही थी और आकाश और सुमित को अपने बड़े भाई कहकर मिलवा रही थी और अविनाश भी उनमें इंक्लूड था। आस्था बहुत खुश थी। उसके चेहरे की चमक अरमान साफ साफ महसूस कर रहा था। पहले कहीं उसके मन में बार बार इस बात का डर हो रहा था कि ना जाने आस्था के दोस्त कौन है जिनके लिए आस्था इतना सारा सामान लेकर आई है। वेल, तभी अचानक आस्था एक घर के सामने रुककर पूछा, काकी काकी विमल कहाँ है? तभी अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आई और वो प्यार भरी आवाज में बोली, आस्था तुम कैसी हो, तुम ठीक हो ना? जब से तुम गांव से गई हो गांव की रौनक ही चली गई है। तब आस्था हंसते हुए बोली, काकी अब तो हम आ गए हैं ना गांव में, रौनक भी आ जाएगी, प्लीज आप हमें बताइए कि विमल कहाँ है। तब वो बूढ़ी काकी आस्था से बोली, अरे बेटा विमल कहाँ होगा, वही है तुम लोगों के पुराने अड्डे पर। अब तो अरमान के माथे पर बल पड़ गए थे कि आस्था ने यहाँ पर अपने दोस्तों से मिलने के लिए कोई अड्डा भी बना रखा था। तब आस्था मुस्कुराई और बोली, ओके ठीक है काकी, हम अड्डे पर जाकर उनसे मिल लेते हैं, मुझे लगता है कि सभी लोग अड्डे पर ही होंगे। अब ध्रुव और आहान दोनों ही मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखने लगे थे। कहीं ना कहीं दोनों ही सोच रहे थे कि आस्था भाभी के दोस्तों को वो अपना दोस्त बना लेंगे और फिर आराम से उनके काफी सारे अच्छे दिन इस गांव में कट जाएंगे। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए अब वो लोग जल्दी ही आस्था के साथ उसके पीछे पीछे जाने लगे हैं। तब अविनाश असमंजस से बोला, लेकिन गोरी तुम्हारे सारे दोस्त किस अड्डे पर हैं, ये काकी किस अड्डे की बात कर रही थी। तब आस्था चहकते हुए बोलती है, अरे भैया हमारे ना सभी दोस्तों का मिलने का गांव का एक अड्डा है, तो हम सभी दोस्त सुबह शाम वही मिला करते थे और वो वहां पर ढेर सारी पार्टी मौज मस्ती सब किया करते थे। अब जैसे ही आस्था ने ये बोला,
अरमान का रह रहकर खून खौल रहा था। वो सोच रहा था कि आस्था इतने सारे लड़कों के साथ पार्टी किया करती थी, आखिरकार ऐसे कैसे कर सकती थी। अरमान तो आस्था के आसपास किसी लड़की को भी देखना पसंद नहीं किया करता था, लेकिन यहां तो आस्था इतने सारे लड़कों के आसपास रहा करती थी, तो ये बात अरमान सिंघानिया को कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी। अरमान जल्दी ही अब गुस्से से आगे बढ़ने लगा था। उसने सोच लिया था कि अगर किसी भी लड़के ने आस्था के साथ बदतमीजी की, वो वहीं के वहीं सबको भून डालेगा। कहीं ना कहीं आकाश और सुमित अरमान के दिल की हलचल को महसूस कर रहे थे, साथ ही साथ वो अरमान के पोजेसिवनेस सबसे अच्छी तरह से वाकिफ थे कि अरमान अपनी बीवी आस्था को लेकर कितना ज्यादा पोजेसिव है। वेल, अब जल्दी वो सब लोग एक बड़े से दरवाजे के सामने खड़े होते हैं। तब आस्था उस दरवाजे की ओर इशारा करके बोलती है, आप लोग जानते हैं यही हमारा अड्डा है, यही हम सब लोग मिला करते थे। तब आहान ध्रुव के कान में फुसफुसाते हुए बोला, आस्था भाभी तो बड़ी डेरिंग निकली, खुलेआम इतने सारे लड़कों से यहां मिला करती थी, मानना पड़ेगा भाई। तब ध्रुव बोला, जस्ट शट अप, चल फटाफट से, अगर भाई ने सुन लिया तो यही हमारी कब्र खोद देगा। तब आहान एकदम से चुप हो गया। वहीं रौनक बेपरवाही से सारी चीजों को देख रही थी, लेकिन आहान की नजरें बार बार रौनक पर जा रही थीं। आहान चाहता था कि रौनक पहले जैसी हो जाए, खूब सारी ढेर सारी बातें करें, उससे लड़ाई झगड़ा करें, उसे छछूंदर बुलाए, जो मर्जी वो बुलाए, लेकिन वो पहले जैसी हो जाए। लेकिन ऐसा लग रहा था मानो कि रौनक तो पहले जैसी होना ही नहीं चाहती थी। उसने अपने आप को सबसे अलग कर लिया था और अब जो कि सबके चेहरे पर एक्साइटमेंट थी आस्था के दोस्तों से मिलने के लिए, लेकिन रौनक के चेहरे पर ऐसा कुछ नहीं था। वेल, अब जल्दी ही आस्था ने वहां जाकर दरवाजा खटखटा दिया और जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो सब के सब लोग अंदर आ गए थे। कहीं ना कहीं अरमान तो गुस्से से सुलग रहा था कि मैं आज इन सारे लड़कों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जो भी उसकी बीवी से आकर चिपकेगा। वेल, अब सब के सब अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर कितने ही सारे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। अब सब लोग हैरानी से उस जगह को देखने लगे थे। बड़ा ही खूबसूरत छोटा सा पार्क नुमा जगह थी और वहां पर छोटे छोटे फूल, फ्रूट्स, फल ये सब लगे हुए थे और छोटे छोटे बच्चे वहां पर मेहनत कर रहे थे, वहां की गार्डनिंग कर रहे थे और फूल पौधों में पानी डाल रहे थे। कहीं ना कहीं अरमान उस जगह को देखकर इम्प्रेस हुआ था, क्योंकि अरमान को इस तरह की जगह काफी ज्यादा पसंद आया करती थी और फूलों की गार्डनिंग करना तो उसे बेहद ज्यादा पसंद था। वेल, अब अरमान आस्था की ओर देखकर हैरत से बोला, आस्था यहाँ तो आपका कोई दोस्त दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर आप यहाँ इस पार्क में क्यों लेकर आई हैं? तब आस्था अविनाश का हाथ छोड़कर अरमान की तरफ मुड़कर बोलती हैं, क्या अरमान जी, क्या आपको दिखाई देना कम हो गया है? क्या आपको दिखाई नहीं देता यही हमारे दोस्त हैं? अब सब लोग हैरानी से एक दूसरे की शक्ल को देखने लगे थे, क्योंकि वहां पर छोटे छोटे बच्चे थे, उनके अलावा वहां कोई नहीं था। तब अरमान नासमझी में बोला, लेकिन कहाँ, हमें तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है, और कहाँ है विमल जिसके बारे में तुम रास्ते में किसी औरत से पूछ रही थी? तब आस्था चहकते हुए बोलती है, रुकिए हम अभी बुलाते हैं। ऐसा बोलकर आस्था ने आवाज लगाई, विमल। अब जैसे ही आस्था ने ये बोला
जितने भी बच्चे उस वक्त वहां मौजूद थे वो सभी आस्था को देखने लगे थे और सबके हाथ में जो जो सामान था वो सामान को वहीं फेंककर वो आस्था की ओर भागते हुए आए और आस्था को आकर उन्होंने गले से लगा लिया था और सवाल पूछने लगे, आस्था आ गई, आप आ गई? ऐसे बोलकर सभी लोगों ने आस्था को चारों तरफ से घेर लिया था और अब तो आस्था के दोस्तों को देखकर सबका मुंह खुला खुला रह गया था। सब लोग आंखें मसल मसल कर कभी आस्था को देख रहे थे तो कभी उन बच्चों को देख रहे थे। तब अविनाश खुश होकर बोला, लेकिन छोटी ये सब क्या है, ये बच्चे, ये सब कौन है, क्या ये सब तुम्हारे दोस्त हैं? तो आस्था बोली, हाँ हाँ भैया, यही सब तो हैं, हमारे दोस्त हैं और इन्होंने तो हमसे फरमाइश की थी कि जब भी हम शहर जाएं उन सब के लिए गिफ्ट लेकर आएं। तब आस्था सब बच्चों की ओर देखकर बोली, आप सबने अपने गिफ्ट बोले थे ना, देखो हम सबके लिए गिफ्ट लाए हैं, ये देखो।